भाव दीपिका लेक्चर नंबर 11। ओ नमस्तेभ्य ओ नमस्तेभ्य ओ नमस्तेभ्य ओ शुद्धात्मने पुनी नमो चित्तधरिया। पंडित श्री दीपचंद जी कासलीवाल रचित यह भाव दीपिका नामक ग्रंथ है, जिसमें जीव के 5 असाधारण भावों की विस्तार से चर्चा है। शुरू में हम अभी औदयिक भावाधिकार में गति भाव अधिकार की चर्चा कर रहे थे, उसमें देवगति भावों की बात चल रही थी अपनी। यहां हमने करीबन ये 26 पेज के बीच में आ गए, निद्रा रोग अनिष्ट संयोग मिला।
जिनका सर्व वस्त्र आभूषण,
देखो हमने ये देखा था ना, दिव्य पवित्र वस्त्र भरनादि परिग्रह जिनके वगैरह वगैरह, उसके बाद में निद्रा रोग अनिष्ट संयोग इष्ट वियोग करी उत्पन्न भाव 3 करी रहित। निद्रा से रहित ने स्थान बुद्धि, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला वाली निद्रा नहीं होती। हम जैसे सोते हैं ना, कैसे घोड़े बेचकर, इसीलिए यहाँ सोलो ऐसा कहते हैं, निद्रा ही नहीं क्या सुख। निद्रा प्रचला वाली निद्रा है,
5
निद्रा में वो पहली 3 निद्राएं नहीं,
निद्रा जो है
जैसे हम इन्हें सोना 8-8 घंटे हमारे यहाँ चलते ना, रात में हम सोते हैं दिन में जगते हैं, वैसा वहाँ ऐसी नींद वहाँ नहीं है, रोग नहीं। हाँ हाँ, निद्रा प्रचला तो होगी,
थोड़ी
यानी वो कैसी बहुत तरल जैसी है, ऐसी नींद जैसे नहीं
होती। ऐसा नहीं बोलने का, जैसा आप हम
सोते हैं
स्वाध्याय में सोते हैं ना, वैसा कभी झपके मारे और कभी आप बराबर बोल रहे हैं, जाना जाना जैसा आप करते हैं, ऐसी गहरी निद्रा नहीं की जिसमें से लार करें उठ के इधर उधर घूम के आए, ऐसी गहरी निद्रा नहीं चलेगा ना अभी।
यानी जिसको भी नींद से रहते निद्रा से रहते ऐसा सामान्य से कथन होगा, रोग से भी रहते, क्योंकि उनके तो दिव्य पवित्र जो वैकिरेक शरीर बताया है तो वहाँ रोग नहीं होते, ना कि उनके वैकिरेक होने पर भी अनेक रोग वहाँ पाए जाते हैं। यहाँ अनिष्ट संयोग और इष्ट वियोग से उत्पन्न भाव उससे भी रहित है। श्रृंगार रस के भरे सर्व 5 इंद्रियन के संपूर्ण विषय सुखनी के भोगन हारे है, यानी 5 इंद्रियों के विषय वहाँ भोगते हैं, वहाँ उपलब्ध होते हैं। शास्त्र पढ़ने की सुनने की धारने की विचारने की है बड़ी शक्ति जिनके, बहुरी वचन बोलना चालना शैया आसन सारी क्रिया देवन की सी होए इत्यादि भाव जीव के देवगति संबंधी देवगति नाम कर्म के उदयते हो। जैसे मनुष्य में मनुष्य जैसे भाव, ऐसे देव में देव जैसे भाव। फिर भी शैया तो कह दिया है ना, वहाँ जो यथा योग्य हाँ तो चिंता नहीं ना, अब चिंता नहीं, अब चिंता नहीं। ये देवगति भाव वर्तमान तो सुखों के कारण है और आगामी मनुष्य तीरियों च दो गति के कारण है। जीव कहाँ से मरकर कहाँ जाता है उसके कारण ऐसा हर हमने हर एक में देखा था।
यहाँ उन्होंने कहा जिनमें शास्त्र पढ़ने की सुनने की और धारण करने की विचार चालीस ज्यादा है,
बहुत है। इतनी बात है, मनुष्य से ज्यादा ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी तीर्थंकरों के समोचरण में वे भी चले जाएंगे। वो तो सर्वार सिद्धि वालों के भी होता है ना, ब्रह्म स्वर्ग के है। हाँ बिल्कुल होगा ना, परंतु फिर भी उनको श्रुत केवली नहीं कहेंगे। उसके धारणा करने का ज्ञान ज्यादा है, जैसे तीरेंचों में नहीं है, नारकियों में नहीं है, मनुष्यों में है, देवों में है, इस तरह से।
लेकिन बारह का ज्ञान उनको भी है,
मुझे याद नहीं है। वो ब्रह्मर्षि कहते हैं उनको ऐसा ही वही है ना, होगा ना। आप क्या देख रहे हैं तत्कार सूत्र में, इसमें इसमें नहीं होगा, वो टीका में रहेगा शायद। मुझे अभी याद नहीं है, उसमें हो सकता है। वैसे हमने सर्वार सिद्धि में भी देखा था कि वहाँ तो तैतीस सागर तक वो चर्चा करते हैं वगैरह वगैरह। हाँ
नहीं
पढ़ने की सुनने की अभी बताए ना, अभी यथा योग्य जो कुछ होगा ना वो सबका वर्णन तो थोड़ा ही अपने आप करेंगे।
और लोकांतिक देवों की संख्या असंख्यात नहीं है, क्योंकि सर्वा सिद्धि वाले तो असंख्यात नहीं है,
वो संख्यात है। ये लोकांतिकों की बात चौबीस
दशम के पाठी होते
लोकांतिक देव। हाँ एक भवावतारी है, द्वादशांग के पाठी है, चौदह पूर्व के धारक है, ब्रह्मचारी रहते हैं, तप कल्याण में आवे छे और देवर्षि कहते हैं। बाकी सर्वार सिद्धि के लिए नहीं लिखा है ना वैसे देश। ये तो हो गया देव गति भाव। ये कहे जे चार गति भाव ते जिस जिस गुणस्थान और मार्गणा स्थान विषय पाइए है सो दिखावे। अभी उनमें कौन कौन से ये गति औदयिक भाव है, मनुष्य गति औदयिक भाव, उनके गुणस्थान कौन से हो गए, जीव समास कौन से होते, वो बताएंगे। अभी बीस प्ररूपणा में चल लगाएंगे उसको। मनुष्य गति भाव सर्व गुणस्थान विषय पाइए, एक से लेकर चौदह गुण स्थान तक। और मार्गणा स्थान विषय गति तो मनुष्य, ये मार्गणा के नाम याद है क्या? आप ही बताएंगे क्या? हाँ कौन कौन आप बताना चाहते हैं? हाँ बोलो बोलो नहीं बोलो
ज्ञान संयम दर्शन
और भव्य तो नहीं कहना, भव्य कहना, भव्य संज्ञ और आहार। देखो अभी यहाँ देखेंगे गति तो मनुष्य जाति यानी गति इंद्रिय ना, इंद्रिय मार्गणा में उसको जाति कह दिया तो पंच इंद्रिय काय में तिरस्काय वाले मनुष्य गति भाव तिरस्काय वाले। योग में यानी मनुष्यों के कौन कौन से योग हो गए? मन के चार, वचन के चार, औदारिक औदारिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कर्म। मनुष्यों में नहीं होगा, वेद तीनों ही पाए जाते हैं, कषाय सभी 25, ज्ञान सभी 8 हो गए।
अच्छा यहाँ कषाय 25 ही होते
हैं? हाँ तो 16 कषाय और 9 कषाय।
हम लोग चार चार की कषाय चार को मान लेंगे, पहले देखते
हैं। और अनंतानुगंधी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष संयोजन ये चार चौक 16 और 9 कषाय मिलकर 25 हो गए। ज्ञान सर्व 8, ये सभी सर्व 8 तो मनुष्यों में ही हो गए क्योंकि मन पर ज्ञान केवल ज्ञान तो मनुष्यों में ही पाया जाएगा। संयम सर्व 7, ये 7 संयमों के नाम बताओ नलिन भाई। 7
संयम 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 सामायिक क्षेत्रों पर स्थापना कल्याण विशुद्धि और नहीं सामायिक क्षेत्रों पर स्थापना कल्याण विशुद्धि
बराबर है आगे असंयम कहना और लास्ट में यथाक्यत संयम कहो क्योंकि हम संयम के भेद। दर्शन सर्व 4, नितिन भाई 4 दर्शन कौन से
है?
केवल दर्शन लेशा सभी 6, अब ये तो मालूम है भव्यत्व अभव्यत्व दोनों है, भव्य अभव्य दोनों है। सम्यक्त्व 6, अरविंद भाई 6 सम्यक्त्व कौन से है?
नित्यत्व सासादन मिश्र साहिब सुमित सम्यक्त्व साहिब सम्यक्त्व
संगी फिर आहारक अनाहारक दोनों इन मार्गणा स्थानक ने विषय मनुष्य भाव वर्ते हैं। बीच में क्या है ऐसा
नहीं
कुछ ऐसा उल्टा हो गया। अब ये समझ में है ना कैसे लगाना। अब तिर्यंच में अभी हम पढ़ने के पहले देखेंगे गुणस्थान कितने हो गए हैं?
1 से 5
गुणस्थान। फिर गति तिर्यंच गति है, जाति
सभी
एक इंद्रिय से एक पंचेंद्रिय तक सभी जाति होती है। यानी गति इंद्रिय काय कौन से काय वाले स्थावर काय छह काय योग में बोलो अभी योग कौन कौन से हो गए? बोलो कौन कौन से हो? मन के 4, वचन के 4, औदारिक मिश्र
बरोबर।
वेद अभी यहाँ से पढ़ेंगे। देखो तिर्यंच गति भाव गुणस्थान तो मिथ्यात्वादिक देश संयम पर्यंत 5 और मार्गणा स्थान में गति तिर्यंच जाति सर्व 5 काय सर्व 6 योग मन के 4 वचन के 4 औदारिक द्विक यानी औदारिक और औदारिक मिश्र और कारमान का योग ये 11 हो गए। तीनों ही वेद पाए जाते हैं। कषाय सभी के सभी 25। ज्ञान कितने हो गए नवीन भाई?
ज्ञान दो, ज्ञान दो, उपमति पुष्प और तीन सूर्य, चार सूर्य।
चार कौन से?
भक्ति श्रद्धा होगी, भक्ति श्रद्धा होगी, तीन ही सूर्य
और कुज्ञान दो हो गए,
पांच।
अब क्या कहते हैं, विभंग ज्ञान भी होगा, विभंग ज्ञान भी होगा, यानी कुज्ञान तीन और सुज्ञान तीन। मन परिज्ञान तो मुनियों के होता है ना। संयम कौन कौन से हो गए? दर्शन, चक्षु, चक्षुरा हो गई तीन, लेशा सभी, भव्य भी और अभव्य भी, सम्यक तो शायद समय तो होगा कि नहीं? नहीं नहीं, उनको पक्का नहीं है, आप पूछ रहे हैं, डाउट खोल रहे
हैं। यहाँ तो लिखा है 6 माने हो गए,
ऐसा नहीं है, वहाँ लिखा है इसलिए नहीं, क्योंकि जिसने पहले तीरियां चाहिए बांधी है, बाद में जिस मनुष्य ने क्षायिक समय को प्राप्त किया है वो भोग भूमि का क्षायिक समय दृष्टि तीरियां चाहिए। तो गुणस्थान क्षायिक समय तो में गुणस्थान तीरियां में चौथा, वहां पांचवा नहीं। संगी, हाँ प्रेरणा बहन, संगी भी है और असंगी भी है, आहारक के अनाहारक दोनों है। इन मार्गना स्थानक ने विषय तीर्यंच भाव प्रवर्तक है। देखो एक एक बार ये 20 प्ररूप नाम ने याद किए तो कितना आसान लगता है, तो ख्याल में आता है कहाँ किसको कहाँ बिठाना है। अथ देवगति भाव गुणस्थान, तो देवों में कितने होते हैं?
चार।
तो मिथ्यात्वादी और संयत परिण चार। मार्गना स्थानक ने विषय, यहाँ केवल मार्गना बताए, वहाँ जीव समास पर्याप्ति प्राण प्ररूपणा ये प्ररूपणा अन्य नहीं लिए, वो लगाना चाहते हैं? जीव समास लगाएंगे, मनुष्य गति में लगाना पड़ेगा। मनुष्य गति में जीव समास कौन सा है? जीव समास के भेद याद है?
14 भेद है।
14 भेद है, इतना तो याद है। लक्ष्मी जी, संगी पंचेंद्र पर्याप्त और अपर्याप्त दो लगेंगे, मनुष्यों में दो लगेंगे, तीर्यंच में 14 की 14। इधर भी हो उधर भी हो। देखो मनुष्यों में जीव समास है ना, पर्याप्ति मनुष्यों में कितनी होती है? 6 यानी पर्याप्तों में भी और अपर्याप्तों में 6 पर्याप्ति होती है मनुष्यों के लिए। तीर्यंचों के लिए हाँ और 6, तीर्यंचों में सभी वैरायटी पर्याप्ति। प्राण मनुष्यों में
9,
मनुष्यों में 10 प्राण हो गए ना, पहले 10 और 7 हो गए अपर्याप्त में, फिर केवली में तो 4 प्राण हो गए, फिर जब योग निरोध होता है तो 2 हो गए, इस तरह से। अभी तीर्यं गति जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा चारों होगी, फिर ऊपर के गुणस्थानों में एक एक कम। उपयोग तो ज्ञान दर्शन से उपयोग कम कर सकते हैं। अभी हम देव की बात पढ़ेंगे। देवगति भाव गुणस्थान तो मिथ्यात्वादी असंयत परें चार। मार्गना स्थान विषय गति देव, जाति पंचेंद्रिय, काय में त्रस काय, योग कौन कौन से हो गए नरीन भाई?
वचन के चार, वैकल्पिक
कारमान, विग्रह गति में कारमान है ना, मन के चार, वचन के चार, वैक्रेक, वैक्रेक मिश्र 2 और कारमाण ऐसे 11। वेद में 2 ही वेद होते हैं, यहाँ नपुसक वेद नहीं होता। कषाय, नपुसक वेद नहीं है, बाकी सब 24। ज्ञान, तीन को ज्ञान की सूचना, संयम में असंयम ही है बाकी कुछ, दर्शन में लेशा छो कैसे हो गए, भवनत्रिक में अपर्याप्त अवस्था में तीन अशुभ होते हैं और बाद में पीत लेशम, और सौधर्मादिक में अपनी अपनी लेशा अपर्याप्त पर्याप्त मन सेम होती है, भवनत्रिक में तीन अशुभ होती है अपर्याप्त अवस्था, इसलिए छो बताए देवो इन जनरल बात करते हैं तभी छो लेशा कहेंगे, भव्य के अभव्य सम्यक को छह संगी है, आहारक अनाहारक दोनों है, अनाहारक कब हो गए विग्रह कारमान का युग, अब उसमें जीव समाज बताना, देवों में जीव समाज बताओ, निवृत्ति पर्याप्त की अपेक्षा अपर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त हम कहेंगे पर्याप्त अपर्याप्त, क्योंकि निवृत्ति अपर्याप्त में भी लगाते हैं ना, क्योंकि देवों में जब अपर्याप्त अवस्था है तो उसमें गुणस्थान कौन कौन से हो गए, सम्यक तो कौन कौन से हो गए वगैरह वगैरह बातें आती है, निवृत्ति पर्याप्त कहेंगे तो यानी हमें मालूम है अपर्याप्त कौन से है तो निवृत्ति पर्याप्त किसका, निवृत्ति अपर्याप्त अंतर्मूर्त है, कारमान का योग एक या दो समय है, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था अंतर्मूर्त तक है, दूसरी पर्याप्ति पूरी होने तक, यानी दो पर्याप्ति हो गई ना, आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति दोनों का काल मिलकर तुमने जीव समाज देखे पर्याप्ति छह, प्राण दस होते हैं पर्याप्ति छ, और प्राण संज्ञा चारों है, निवृत्ति पर्याप्त में ऐसा नहीं लेना क्योंकि प्राण भी अपर्याप्त ने लब्धि अपर्याप्त के होते हैं उसमें चला जाएगा, इसमें अलग से नहीं गिनते, निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में भी वो भी श्वासोश्वास वगैरह शुरू नहीं है तो उसकी अपेक्षा अगर कहना है फिर भी हम उसकी बात नहीं करते, लब्धि अपर्याप्त मिले, अब नरक गति में देखेंगे, अथ नरक गति भाव गुणस्थान तो मिथ्यात्वादी असंयत पर्यंत, और मार्गणास्थान विषय गति नरक गति जाति पंचेंद्रीय जाति है, काय त्रस्काय योग में मन के चार वचन के चार, वैकृक के दो वैकृक वैकृक मिश्र और कारमान, वेद अकेला एकमात्र नपुसक वेद है, कषाय दो वेद बिना 23, ज्ञान तीन कुज्ञान तीन सुज्ञान, संयम असंयम क्योंकि चौथे गुणस्थान तक है, दर्शन चक्षु अचक्षु अवधि, लेशा में कृष्ण नील और कापूर, यानी वो तो ऊपर के नरकों में कपोत है, बीच वाले नील है और नीचे के कृष्ण लेशा, यानी प्रत्येक की अपनी अपनी लेशा वही कायम रहती है, भव्य और अभव्य दोनों है, सम्यक तो सभी छह पाए जाएंगे, संगी है आहारक और अनाहारक दोनों होंगे, इसमें भी जीव समास में तो संगी पंचेंद्रिय है और निवृत्ति पर्याप्त भी है, तो ये गति भाव यहाँ समाप्त होता है, इति श्री भावदीपिका ग्रंथ के औदयिक भावाधिकार विषय प्रथम गति भाव अंतराधिकार समाप्त हुआ, मुख्य अधिकार तो औदयिक भाव का है और उसमें अंतर अधिकार है नहीं, उसमें अभी सब रिविजन और बनाएंगे तो गति भावाधिकार हो गया, अंतराधिकार है नहीं उसमें सब रिविजन पिटा भेद अधिकार का भेद, क्योंकि औदयिक जितने भाव है उतने अंतराधिकार हो गए, औदयिक भाव के ग्रुप्स बताएंगे, ग्रुप्स बताना कितने होते हैं?
आठ
है। हाँ बोलो।
गति,
हाँ
गति चार,
गति कषाय,
वेद,
और फिर चार एक एक अब यहाँ मिथ्यात्व भाव अंतराधिकार शुरू है। ख्याल में ना, क्यों अंतराधिकार? ये अपनी औदयिक भावाधिकार ही चल रहा है, उसमें से मिथ्यात्व भावाधिकार ले रहा अंतराधिकार। पढ़ेंगे अभी उसका मंगलाचरण। दर्शन मोह विध्वंस करी निज गहि सम्यक भाव, जय घातियाचार विधि नमो महंत जिन राय। देखो, दर्शन मुंह का विध्वंस करके निज गहि सम्यक भाव, इन्हें स्वयं सम्यक भाव को ग्रहण किया है। जय घातियाचार विधि, और चार घाती कर्मों के ऊपर जिन्होंने जय प्राप्त किया है, ऐसे जिनराज को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे? वो महंत है, महान है। आगे मिथ्यात्वाधिकार कहिए है। दर्शन मोह कर्म के उदय तय जीव के मिथ्यात्व भाव हो है, तातई या को औदयिक मिथ्यात्व भाव कहिए। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि कर्म हमें मिथ्यात्व कराता है। जीव स्वयं अपने अपराध से मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है, तो सामने मिथ्यात्व कर्म का उदय पाया जाता है। तो कर्म के निमित्त की तरफ नाम देना है, इसलिए उसको औदयिक भाव कहा। और वो दर्शन मुंह जो मिथ्यात्व नाम कर्म का जो उदय, नाम का जो उदय है कर्म का, इसलिए इसका नाम है मिथ्यात्व भाव। वहाँ कर्म के उदय में मिथ्यात्व कर्म का उदय, और जीव में मिथ्यात्व भाव, मिथ्यात्व परिणाम। अब ये किसको कहना? तो विपरीत अभिनिवेश, अभिनिवेश यानी अभिप्राय, मान्यता। विपरीत अभिनिवेश सो मिथ्यात्व भाव कहिए, विपरीताभिनिवेश कहिए अन्यथा अभिप्राय। अन्यथा ने जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। अतत्व श्रद्धानुरूप भाव, ये तत्वों का सही श्रद्धा नहीं होना, उसको अतत्व श्रद्धा। अभी तत्व किसको कहना? तो तस्य भावस तत्वम, तत्व त्वेन पना, उसका वह पना, जिस पदार्थ का जो उसका भाव है। तो कहते जा का जो भाव सोहिता का तत्व, जैसे हम कहते वृद्ध का भाव क्या है? तो वृद्धत्व, वो ही उसका तत्व है। और जा का जो भाव नाही अन्यथा भाव मानना, सो अतत्व श्रद्धान कहिए। यानी जिसका जो भाव नहीं है और उसको अन्य भाव मानना, वह अतत्व श्रद्धान। जीव का भाव है जीवत्व, जीव तत्व जिसको हम कहेंगे जीवपना, ज्ञान दर्शनपना, और उसको आश्रव तत्व मानना। आश्रव क्या है? शुभाशुभ भाव है, मिथ्यात्व है। उस रूप जीव को मानना, ये क्या हुआ? अतत्व श्रद्धा हुआ। ऐसे हरेक में लगा ना, ताही तत्वतई जीवादि पदार्थ अपने अपने जिस जिस भाव रूप तिष्ठे है, तीसरी भाव कहिए स्वरूप सहित मानना, सो तत्वार्थ श्रद्धान रूप समय दर्शन भाव है। क्या कहते हैं? समय दर्शन किसको कहना? तो कहते तत्वार्थ श्रद्धान रूप जो तत्व समय दर्शन रूप भाव है। तो कहते किसका ये तत्वार्थ है, कौन से तत्व है? तो कहते जीवादि पदार्थ। यानी तत्व से क्या लेना यहाँ पर? जीवादि पदार्थ, उसको यहाँ तत्व कहा। और वो अपने अपने जिस जिस भाव रूप पाए जाते हैं, जिस तत्व का जो भाव है उसी भाव सहित उसको मानना, अन्यथा नहीं मानना। जैसा है वैसा, हम क्या कहते हैं? ज्यों का त्यों श्रद्धा। ज्यों का त्यों में उसका स्वरूप क्या है, फिर उसमें ये उपादेय क्या है, ये सब उसमें लगा लेना, उसको कहेंगे ज्यों का त्यों श्रद्धा। उसको कहेंगे तत्वार श्रद्धान रूप समय दर्शन। और जिस भाव रूप नाही तिस भाव रूप मानना सो अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव हो गया। यानी आश्रव से संवर मानना या आश्रव और संवर एक मानना या आश्रव करते करते मोक्ष होना मानना ये सब क्या होगा अतत्व श्रद्धान। सो मिथ्यात्व भाव दो प्रकार का है, एक अग्रहित दूसरा ग्रहित। अब अग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप कहते हैं तहां परद्रव्य परगुण परपर्याय विषय यानी उसमें अहंकार ममकार बुद्धि क्या कहते हैं परद्रव्य परद्रव्य के गुण और उसकी पर्याय किसकी पर की यानी सोफा की क्या लग पर की चटाई की कोई फॉर एग्जांपल बताओ बच्चे की तो अरे वो भी परद्रव्य है ना पुस्तक की ऐसा कौन सा है आप जो मानते थे या मान रहे हैं ऐसा कोई है क्या जिसमें अहंकार ममकार बुद्धि हो रही है जो पर पदार्थ अच्छा इतना दूर दूर अरे शरीर है ना पहले हाँ शरीर को तो मेरे में रखो बाकी सबको पर इसको पर करो ना तो बाकी सब पर हो जाते हैं हाँ फिर वो कहने की जरूरत नहीं है हाँ तो इसको तो हम अपने में रखते हैं फिर इसके लगते हुए सारे अपने हो जाते हैं। देखो पर द्रव्य पर गुण पर पर्याय विषय तो मैं गोरा हूँ मैं खूबसूरत हूँ मैं ऊंचा हूँ अभी सब सब लगा लेना शरीर के जो कोई अवयव है उस रूप मैं हूँ इसलिए मैं अच्छा हूँ या इसलिए मैं बुरा हूँ कुछ भी ऐसा मान लें हाँ पैरालिसिस हो जाए मैं अभी अधूरा हुआ मैं अंगहीन हो गया अभी कुछ भी ऐसी चलती है ना बात कितना अपने को हीन दीन मानने लगता है जी। तो कहते उसमें अहंकार ममकार बुद्धि व दृष्टिगोचर उद्गल पर्याय विषय द्रव्य बुद्धि अदृष्टिगोचर द्रव्य गुण पर्याय विषय अभाव बुद्धि। देखो देखो ये नया उसमें यानी जो दिखाई दे रहे पुद्गल उसका तो आस्तिक्य भाव है उसमें क्या ना उसमें द्रव्य बुद्धि यानी उसको तो स्वीकार कर रहा है कि कोई द्रव्य है कोई वस्तु है करके और जो अदृष्टि गोचर है वो जो दिखाई नहीं दे रहे ऐसा नहीं कर स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है जो दिखाई नहीं दे रहे इंद्रियों के द्वारा जाने नहीं जा रहे है उनमें अभाव बुद्धि वो तो है ही नहीं ऐसा कहीं ना कर्म किसने देखे ये अभाव बुद्धि
कर्म को
किसने देखा हाँ जो दृष्टिगोचर नहीं है जो सामने दिखाई नहीं देते वो है ही नहीं है ऐसा अरे सर्वज्ञ ही नहीं है ऐसा कहने वाले ये अभाव बुद्धि। सो अग्रहित मिथ्यात्व भाव है इन्होंने अलग से इसकी परिभाषा बनाई अक्षरीय वही तो जिसको ही ना आस्तिक के भाव नहीं है उसको ही ना ये सम्यक दर्शन का एक गुण बताया आस्तिक के जो भगवान ने बताए हुए बातों के ये छह द्रव्य है अभी पुद्गल तो कुछ तो दिखाई देते हैं बाकी तो नहीं दिखाई देते धर्म धर्म तो दिखाई नहीं देते जीव भी कहाँ दिखाई देता है जीव को ही नहीं मानने वाले लोग हैं यानी अपना ही अस्तित्व नहीं मान रहे वो दृष्टिगोचर यानी बस कुछ दृष्टिगोचर पुद्गल है उतना ही बस है बाकी कुछ है ही नहीं है यानी जीव अपना स्वयं का भिन्न अस्तित्व है इसको मानने के लिए भी तैयार नहीं आत्मा किसने देखा है होता तो दिखाई क्यों नहीं देता है क्या जो हल्का भारी कुछ है क्या ठंडा गर्म पूछते हैं ऐसे लोग और कौन पढ़े लिखे ज्यादा क्योंकि वो ज्यादा सियाने होते हैं ना देखो ऐसे कितने ही जीव होते हैं सरल स्वभावी है जिन्हें आज्ञा से यानी ये भगवान ने बताया ना बिल्कुल उसको 100% सही मान रहे परंतु हम पढ़े लिखे हो गए ना तो अभी दिखाओ नहीं तो हम नहीं मानेंगे क्योंकि अभी वो तो हम साइंस के भगत हो गए ना परद्रव्य जो शरीर पुद्गल पिंड जो कभी परद्रव्य में यहाँ डिफाइन किया शरीर क्या है वो पुद्गल का पिंड है ता विषय ने उसमें जो अहम बुद्धि का अर्थ क्या है यह मैं हूं सो यह परद्रव्य विषय अहम बुद्धि मिथ्या तो भाव है यानी शरीर मैं हूं यह मान्यता मिथ्या तो भाव है बहुरी जैसे पुद्गल के स्पर्शादि भाव ऊपर का वाक्य उन्होंने बताया परद्रव्य की बात बताई शरीर परद्रव्य है पुद्गल द्रव्य का पिंड है और उसमें अहम बुद्धि ने यह मैं हूं ये मान्यता ये मिथ्यात्व है अब जैसे पुद्गल के स्पर्शादि भाव उनमें तीन विषय अहम बुद्धि जो मैं हूं ताता मैं सीरा में यानी ठंडा में सीरा यानी ठंडा में कोमल में ताता यानी गर्म देखो ये सब स्पर्श गुण की पर्याय लिए ना गर्म ठंडा कोमल में कर्कश में सच्चिकन में वृक्ष में सूक्ष्म में हल्का में भार्या में गोरा में काला में आरक्त में हरित में पीत में सुगंध में दुर्गंध में मीठा में खाटा में कटुक में कशायला में चरपरा में इत्यादि परगुण विषय जो अहम बुद्धि सो मिथ्या तो भाव है यहाँ गुण यानी गुणों की पर्याय को लिया और
परद्रव्य
परगुण
अभी यहाँ जो लिया वो परगुण
लिया और पर पर्याय में अभी मनुष्य देव नार की उसको ले लेंगे पर पर्याय में यहाँ गुण में गुण और उनकी पर्याय ली स्पर्श गुण और उसकी पर्याय क्योंकि गुणों की पर्याय तो न ख्याल में आती है ना स्पर्श गुण कहने से या तो हल्का भारी रुका चिकना ठंडा गर्म कड़ा नरम जो कुछ है
वो सूक्ष्म भी डाल दिया
हाँ सूक्ष्म में नहीं छोटा में छोटा बड़ा इस तरह से सूक्ष्म में हल्का में भारी में इस तरह से ये हो गया देखो ऊपर जो हमने अग्रित मिथ्यात्व का स्वरूप बताया ना परद्रव्य परगुण और परपर्याय में अहंकार परद्रव्य में शरीर के पुद्गल पिंड में परगुण जो अभी हमने पढ़ा अभी पर पर्याय की बात करेंगे मैं देव मैं नारकी मैं मनुष्य मैं तिर्यंच और इनके अनेक विशेष ये अनेक विशेष मालूम है देवों के क्या क्या विशेष है हाँ अरविंद भाई देवों के अनेक विशेष क्या क्या है भुवनवासी है व्यंतर है ज्योतिषी है वैमानिक है कल्पवासी है वो उनके भेद मनुष्यों में आर्य है म्लेच है भूभूमि वाले कुभूभूमि वाले और कर्मभूमि वाले वो पर्याप्त है अपर्याप्त है वो उसके वेदों की अपेक्षा भेद वो भेद उसके तीरियंचों में एक इंद्रिय से पंचेन्द्रिय तक कितने सारे भेद है सूक्ष्म है मादर है पर्याप्त है अपर्याप्त है ये उनके अनेक विशेष हुए तीन विषय अहम बुद्धि सो पर पर्याय विषय अहम बुद्धि मिथ्या तो भाव है तो मैं मनुष्य हूं ये किसको सिखाना पड़ता है मनुष्यों को तो इस पर्याय में जन्म हुआ तो शरीर मैं हूं और मैं मनुष्य हूं ये दोनों में उसकी अहम बुद्धि चलती है पर्याय में अहम बुद्धि ऐसा तो परद्रव्य विषय अहम भाव मिथ्या तो रूप जानना परद्रव्यादि यानी परद्रव्य परगुण और पर पर्याय यानी इन तीनों में अहम बुद्धि है वह मिथ्या तो भाव ये अहम बुद्धि की तीनों बातें हुई परद्रव्य में अहम बुद्धि परगुण में अहम बुद्धि और पर पर्याय में अहम बुद्धि परद्रव्य में शरीर पिंड लिया मुख्यतः और फिर परगुण में स्पर्श की पर्याय रस की पर्याय शरीर संबंध उसके लिए और पर्याय में देवनार की मनुष्य तीर्यंश इसको लिए अब आगे बढ़ेंगे हमारे 29 पेज पर आ गए हैं बहुरी यह मेरा धन यह मेरा मंदिर, मंदिर यानी महल, ये मेरे आभूषण, ये मेरे वस्त्र, ये मेरे धान्यादि पदार्थ इत्यादि वस्तुन विषय ममकार, ममकार मम यानी मेरा, मेरे पने की बुद्धि, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। सो परद्रव्यन विषय ममत्व बुद्धि रूप अगृहित मिथ्यात्व भाव है। मात्र कहने नहीं है, ये तो मानने की बात है, मिथ्यात्व भाव की बात है, अभिप्राय की बात है। क्योंकि कहने के लिए तो कहेंगे ना, ये तो मेरा घर है, हाँ ये इनका घर है, ऐसा कहेंगे हम। लौकिक में कथन तो ऐसा रहेगा, परंतु यहाँ मान्यता की बात चल रही है। ममकार यानी ममत्व बुद्धि, शरीर का बल वीर्य विषय ऐसा मानना, यह मेरा बल ऐसा है, अनेक पराक्रम करूं, अनेक भटनी को जीतूं, भट यानी सुभट को योद्धा, अनेक कार्य करूं, यह मेरा शिष्य है, यह मेरा शब्द, यह मेरी चाल, यह अनेक कार्य विषय, मेरी प्रवृत्ति इत्यादि परगुण विषय ममत्व बुद्धि रूप अगृहित मिथ्या। देखो अभी क्या था, पहले तो परद्रव्य में अहम बुद्धि थी, अब यहाँ क्या हो रहा है, ममत्व बुद्धि हो रही, यानी प्रवृत्ति में उसको अपनी प्रवृत्ति मान रहा है। शरीर का कार्य है वो मेरी है, समझते, ममत्व बुद्धि हो रही है। अन्य द्रव्यों के कार्य में यह मेरा कार्य है, ऐसी क्या है, ममत्व बुद्धि चल रही है। देखो फिर पढ़ेंगे हम, पहले में पहले वस्तुओं में ममत्व बुद्धि, कौन से, मेरा धन, मेरा घर, मेरा ये सब, ये तो वस्तुओं में ममत्व बुद्धि है। ये परद्रव्य में, पहले परद्रव्य की बात की, फिर शरीर का जो गुण है, शरीर के गुण, यानी शरीर मोटा है तो मैं मोटा हूँ, शरीर बलवान है, शरीर में बल ज्यादा है तो देखो मैं कितना बल वाला हूँ, ये मेरा बल है, मैं अनेक पराक्रम कर सकता हूँ, देखो मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं इतने लोगों को पढ़ाता हूँ, ये क्या हुआ, ये परगुण में अहम बुद्धि हुई, ममत्व बुद्धि हुई। बोलने का कार्य मैं कर सकता हूँ, ये क्या हुआ, परगुण में ममत्व बुद्धि हुई, ये मेरा है ऐसा कहे ना। पहले तो यह मैं हूँ था शरीर में, अब ये बोलना चालना जो क्रिया हो रही है वो मेरी है, यानी ये ममत्व बुद्धि, ये मेरा मेरा सब लेना है उसमें, सब मेरा शिष्य, मेरा शब्द, मेरी चाल, मेरी आवाज, अभी अभी लगा लो, मेरा क्या क्या है आपका सब लगा लो इसमें। तो परगुण विषय ममत्व बुद्धि रूप अगृहित मिथ्यात्व तो भाव है। अब ये मेरे पुत्र, ये मेरी स्त्री, ये मेरी माता, ये मेरा पिता, ये मेरा भ्राता इत्यादि, वहाँ ये मेरे सामंत, ये मेरी सेना, ये मेरी रैयत यानी प्रजा, ये मेरे हाथी, ये मेरे घोड़े, रथ, पालकी, गोधन इत्यादि विषय ममकार बुद्धि, सो परपर्याय विषय ममकार बुद्धि रूप अग्रहित मिथ्या तो भाव है। अब यहाँ जो अन्य जीव लिए, अन्य शरीर सहित वाले, अकेला जीव अकेला अलग से नहीं लिया है, ये पुत्र, स्त्री, माता, पिता, भ्राता वगैरह सब लिए, मंत्री, प्रजा, ये रथ और पालकी और गोधन लिया। रथ में तो रथ यानी तो रथ हाँकने वाले घोड़ों सहित वाला रथ लेना, पालकी में पालकी उठाने वाले हम हुए वो लेना। जिसको हम पर्याय ने असमान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं ना, ऐसे इस तरह से उसको पर्याय बुद्धि कहते हैं, यानी इन पर्यायों में ये मेरे है ऐसी ममत्व बुद्धि। एक पैराग्राफ हमने दूसरा पढ़ा था, ऐसा लिखा था कि परद्रव्य, परगुण, पर्याय, परपर्याय में अहंकार और ममकार, अहंकार के तीन पैराग्राफ अलग बताए, ये ममकार के बता रहे। बहुरी दृष्टि विषय जेती घटपटादि पुद्गल की पर्याय आवे है, तिनकु जुदा जुदा द्रव्य माने हैं। क्या कहते हैं, जितनी दिखाई देती है वस्तुएं, क्या क्या दिखाई देता है, घट पटादी पुद्गल की पर्याय यानी स्कंद दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्कंद दिखाई देते हैं, घट और पट हमेशा तो ये तो रेगुलर उदाहरण दो ले लेंगे, उनको जुदा जुदा द्रव्य, वो द्रव्य ही मानते हैं उसको, अनेक पुद्गलों का स्कंद बन के हुआ है ऐसा न मानकर, ये घट नाम का द्रव्य ही जुदा है, पट नाम का वस्त्र जुदा है, ये घट है, ये पट है, ये स्वर्ण है, ये पाषाण है, ये पर्वत है, ये वृक्ष है, ये मनुष्य है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये काक है, ये चिड़िया है, ये स्याल है, ये सिंह है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, इत्यादि पर्यायन विषय द्रव्य बुद्धि धारे, तिनको सत्य माने हैं, और जे दृष्टि हित जे दृष्टि में आते हैं उसकी बात है, उनको अलग अलग द्रव्य ही मान लिया उसने, ये स्कंद रूप से दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं मानकर, यानी वो सब एक पुद्गल की पर्याय ऐसा नहीं मानकर, उसको अलग अलग द्रव्य उसने के लिए, और जो दृष्टिगोचर नाही यानी जो दिखाई नहीं दे रहे सामने, इसे जे दूर क्षेत्रवर्ती वहां होय करी विनसी गई यानी भूतकाल की, या अनागत काल विषय होएगी यानी भविष्य काल में होने वाली वह इन्हें, और इंद्रिय नीते अगोचर सूक्ष्म पर्याय, क्या क्या लिया यहाँ, जो दिखाई नहीं देते ऐसे दूर क्षेत्रवर्ती पदार्थ भूतकाल में हो गई या भविष्य काल में होने वाली जो अन्य पर्याय, और इंद्रियों से जो जानी नहीं जाती है ऐसे सूक्ष्म पर्याय इत्यादि, जे अपनी और पर की तीन को अभाव रूप माने, अपनी भी हो इनका सत्व हुआ वह होएगा वह वर्तमान विषय है नहीं माने है इत्यादि भाव तो अग्रहित मिथ्यात् रूप जानना, ये अग्रहित मिथ्यात् तो जीव के अनादि भाव है, किसी ने सिखा नहीं है अनादि का, और यथा योग्य सर्व पर्याय सदाकाल सर्व क्षेत्र में जीव के प्रवर्तते हैं, सभी पर्यायों में ने चारों गतियों की जो हमने चार पर्याय अलग अलग देखी है, सभी कालों में और सभी क्षेत्रों में ये मिथ्यात्व भाव पाया जाता है, कोई करी कदाचित उपदेशित नहीं तातई नैसर्गिक कहिए, ये अग्रहित मिथ्यात्व कैसा है तो नैसर्गिक है, वो किसी ने सिखाया नहीं उसने, इन्हें उपदेश से नहीं प्राप्त हुआ है तो नैसर्गिक है, आगे ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप कहिए है, ये अपना ये विषय तो बहुत बार हुआ है फिर भी इनके जो प्रस्तुतिकरण कुछ अलग से है ढंग से, ये गृहित का भी मिथ्यात्व स्वरूप को धरे ऐसा जो यह घोर संसार जीव को सर्वदा अहित का कारण, सर्वदा ने हमेशा ता विषय उसमें जीव का हित जो मोक्ष, मोक्ष कही यानी मोक्ष किसको कहना, कि सर्व कर्मन का अभाव अर्थात संसार से छूट जाना, ताके कारणभूत छह पदार्थ है, देखो क्या कहते हैं, ये घोर संसार कैसा है तो मिथ्यात्व स्वरूप को धारण करने वाला है और जीव को हमेशा ही के लिए अहित का कारण है, उसमें भी जीव का हित कौन है तो मोक्ष है, और मोक्ष किसको कहना तो संसार से छूट जाने को कहना या सभी कर्मों के अभाव को मोक्ष कहना, ताके कारणभूत छह पदार्थ है, किसके मोक्ष के कारणभूत छह पदार्थ है कौन कौन, देव गुरु धर्म आप्त आगम और पदार्थ, ऐसे ये मोक्ष मार्ग के कारण छह तत्व है। अब देव का स्वरूप कहते हैं, आप कहेंगे देव और आप्त एक ही हो गया ना, आप्त तो अरिहंत को कहते हैं, अभी कहेंगे यहाँ देव में और उसमें क्या क्या डिफरेंस, क्या निर्दोषो देवा, यहाँ देव कहने से देवगति वाले देवों की बात नहीं है। निर्दोष यानी संपूर्ण दोषन करी रहित जो जीव हो सो देव कहिए हैं। ये दोष कौन से है? अज्ञान और कषाय, ये दो दोष है। अज्ञान से और कषाय से रहते का अर्थ क्या है? कषाय से रहते नहीं वितरागी, अज्ञान से रहते नहीं सर्वज्ञ। हम तो यही कह रहे ना, सर्वज्ञ और वितरागी। कहा कर्म के आवरण सहित जो ज्ञान सो अज्ञान कहिए। क्या कहा? अज्ञान किसको कहा? उसको कौन सा अज्ञान कहेंगे मालूम है? औदयिक अज्ञान। बहुत अच्छा, क्योंकि वो मिथ्या ज्ञान को भी अज्ञान कहने में आता है। उसको कौन सा अज्ञान कहेंगे भाई? मिथ्या तो कौन है? मैंने क्या कहा? देखो यहाँ अज्ञान किसको कहे? औदयिक अज्ञान कहा, आवरण वाला जो है
वो अज्ञान कहे।
नहीं यहाँ उदय
यहाँ यहाँ उदय का
वहाँ क्या?
वहाँ उसको मिथ्या ज्ञान कहते।
भावों में बताओ ना।
क्षयक्षण
है ना, वो क्षयक्षण ही भाव में आता है। यानी जब तक समय यानी केवल ज्ञान नहीं हुआ है तो कुज्ञान भी और सुज्ञान भी क्या है? वो क्षयक्षण ही है। परंतु हम अज्ञान की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने केवल कुज्ञान की बात उठाई। यानी जब अज्ञान शब्द आता है तो जब तक केवल ज्ञान नहीं तब तक ये सब औदयिक अज्ञान है। और जो मिथ्या दृष्टि का जो अज्ञान कहने में आता है वो क्षय क्षमिक अज्ञान, यानी उसको औदयिक अज्ञान भी है मिथ्या दृष्टि को। परंतु कुमति कुशुद ये जो ज्ञान बताते हैं वो कैसा है? क्षय क्षमिक ज्ञान है ना। देखो हम क्या पढ़ रहे थे, कर्म के आवरण सहित जो ज्ञान सो अज्ञान कहिए, और राग द्वेष भाव सो कषाय कहिए। एकदम सिंपल परिभाषा बता रहे ताते ही, यानी इसलिए जो अज्ञानी और कषायी जीव स्व पर के हित को नहीं कर सके तब पूज्य पद विषय कैसे स्थापित हो? यानी देव किसको कहना? तो कहते जो अज्ञानी होगा और कषायी होगा वो स्व के और पर के भी हित को नहीं कर सकता, तब उसको पूज्य पद में कैसे हम बिठाएंगे? ताते जगत के जीव पूजे है सो अपने हित के वास्ते पूजे है। किसी को पूजते हैं अपने हित के लिए पूजते हैं। जो अज्ञानी और कषायी स्वयं का हित नहीं जानता वो दूसरे का हित क्या करेगा? जिस जीव सो हित नाही हो सके किसको काहे को पूजे? अब देखना हम किस किस को पूछते हैं या पूछते थे और क्या क्या हित होता था, जरा विचार करके देखना। क्या रूढ़ी के लिए पूछते हैं? जो जिस जीव सो हित नाही हो है, यानी जिस जीव के द्वारा अपना कोई हित नहीं साधता तो उसके काहे को पूजे? तो हम देखते हैं लौकिक में लोग क्या क्या पूछते हैं, नदी को पूछते हैं, वृक्ष को पूछते हैं, तीरंचों को पूछते हैं, क्या क्या पूछते हैं। उनसे तो कोई हित नहीं सद रहा है परंतु तो विचार नहीं करते। जाते ही यानी क्योंकि जे हित के कारण नाही ते पूज्य भी नहीं, पूजनी जे पूजनीय जिनकी पूजा की जाए उनको पूज्य कहते हैं। तो कहते जो हित के कारण नहीं है वो पूज्य भी नहीं हो सकता। पूज्य नहीं ते देव भी नहीं है, इसे वो देव भी नहीं है। ताते जे समस्त ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के नाश होते प्रकट होया है अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, और समस्त दर्शन चारित्र मुंह के अभाव होते मिट गए मिथ्यात और कषाय भाव, ताही करी उत्पन्न भया है अपना सहज स्वभाव अनंत सुख, और अंतराय कर्म के अभाव होते प्रकट भया है अनंत वीर्य। ऐसे अनंत चतुष्टय के धारक परम देव है। देखो क्या क्या कहना चाहते फिर देखते हैं। परम देव किसको कहा, पहले ने पहले ये बताया, जो दूसरे के हित के कारण नहीं है पूज्य भी नहीं है और पूज्य नहीं वो देव भी नहीं है। अब देव कौन है तो कहते कि समस्त ज्ञानावरण दर्शन। अभी ज्ञानावरण, समस्त ज्ञानावरण के नाश से केवल ज्ञानावरण उत्पन्न हुआ, एक केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, सॉरी अनंत ज्ञान जिसको कहेंगे, और समस्त दर्शनावरण कर्म के नाश से अनंत दर्शन है। समस्त दर्शन चारित्र मोह के अभाव से, दर्शन मोह के अभाव से क्या हुआ, सम्यक तो हो गया, और चारित्र मोह का संपूर्ण अभाव हो गया है तो पूर्ण वितराग भी हो गया है, यानी मिथ्या तो और कषाय नष्ट हो गए। तो कहते हैं मिट गए हैं मिथ्या तो और कषाय, दर्शन मोह के अभाव से मिथ्यात्व मिट गया, चारित्र मोह के अभाव से कषाय मिट गया। उसलिए क्या हुआ, अपना सहज स्वभाव प्रकट हुआ, कौन सा, अनंत सुख स्वभाव में ही पड़ा है और वो प्रकट हुआ, और अंतराय कर्म के अभाव होते प्रकट हुआ अनंत विवेक। यानी ये जो चार घाती कर्मों के अभाव से अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हुआ। जिसको एक नाम देने तो क्या देंगे भाई, चार अनंत चतुष्ट, नहीं अनंत चतुष्ट, अनंत चतुष्ट, हाँ उसी का अर्थ है चार। ऐसे अनंत चतुष्टय के धारक परम देव है, जाते अपने हित की तो भई है सिद्धि जिनके, और परजीवन के हित करने विषय परम शक्ति को धारे है, ताते पूज्य पद विषय तिष्ठे है, ताते देव है। ये दूसरों का हित करते हैं ऐसा नहीं, उनका दूसरों का हित सहज सहजता है तो वो दूसरों का हित करते हैं ऐसा कहने में आता। बहुरी जे सर्व कर्म का अभाव करी, ये तो अनंत चतुष्टय प्रकटा है, ये परम देव अहंतों को बता रहे। अब कहते जे सर्व कर्म का अभाव करी, परद्रव्यते सर्वथा छूटी, लोक के शिखर तिष्ठे, सर्व प्रकार भई है अपने स्वरूप की सिद्धि जिनके, संपूर्ण रूप से अपने स्वरूप की सिद्धि प्रकटता हुई है, सम्यक्त्वादि अष्ट गुण युक्त, यानी ऐसे ये पर्याय है परंतु फिर भी उसको सिद्धों के आठ गुण कहते हैं, ऐसे परम देव सिद्ध भगवान ते देव है पूज्य है। पहले अरिहंतों को देव और पूज्य कहा, अब सिद्धों को भी देव और पूज्य कहा, जिनके स्वरूप चिंतन मात्र तय ही जीवन का हित हो है और सुख की प्राप्ति हो है, ऐसे परम देव का स्वरूप है। अब यहीं रुकेंगे हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देता हूँ।